यज्ञ का तत्व दर्शन गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात।
एक फिलॉसफी एक दर्शन है यज्ञ।
देवियों भाइयों, अफ्रीका में हमारे यज्ञ आयोजन का आज दूसरा दिन है।
यह लाउड स्पीकर है, इसे बुद्धि के द्वारा बनाया गया है। इससे आप हमारी आवाज दूर से भी सुन सकते हैं। हमारे पास अखबार है, चश्मा है, पेंसिल है, हमारे पास बोलने वाली यह मशीन है और न जाने क्या क्या चीजें हैं। ये आपकी कमाई हुई नहीं है और मशीन की भी कमाई हुई नहीं है। अगर हमारे पास यह मशीन नहीं होती तो अपनी आवाज हम आप लोगों को नहीं सुना सकते थे और आप मेरे भाषण नहीं सुन सकते थे।
इससे आपको महरूम रहना पड़ता और आप घर चले जाते।
यह श्रेय मशीन बनाने वालों को है कि आपको बेहतर विज्ञान मिला है।
हमारे समाज का हर आदमी उनका कर्जदार है, ऋणी है। इस ऋण को चुकाने के लिए आदमी को कुछ काम करना चाहिए। मित्रों,
यज्ञ एक फिलॉसफी है और यज्ञ एक कर्मकांड है।
कर्मकांड क्या है?
कर्मकांड यह है कि जो चीजें हमारे पास हैं, उसको हम अपने लिए ही इस्तेमाल न करें, वरन समाज के लिए बांट दें। दूसरे लोगों में हम उसे बांट देते हैं।
हमारे पास घी था, हमारे पास शक्कर थी, हमारे पास मेवा थी, हमारे पास पैसे थे।
बच्चों ने कहा कि पिताजी,
इस घी को हमारे दाल में डाल दीजिए, इससे हम पराठे बनाएंगे, पूरी बनाएंगे।
आप तो इसका हवन करने चले हैं। बच्चे की बात सही थी या गलत थी?
सही थी।
बच्चा कहता है कि हम घी खाएंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, तो बच्चे की बात सही नहीं है। हाँ सही है, और आपकी बात सही नहीं है। हाँ आपकी बात और भी सही है। आपकी बात इसलिए सही है कि बेटे, हम अपनी सारी की सारी कमाई को अकेले खाने के हकदार नहीं हैं। हमने जो कमाया है उसका पूरा हक स्वयं हम खा जाएंगे, यह उचित नहीं है। उसमें दूसरे भी हकदार हैं,
उनका हिस्सा बांटकर ही हमें खाना चाहिए।
सही नहीं है अकेले कमाना और अकेले खाना।
मित्रों, जो आदमी अकेला ही खाता है और अकेला ही कमाता है, उस आदमी का नाम गीता की परिभाषा में चोर है। तैदतान्त्रदायभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेनैव सह। जो आप ही कमाता है और आप ही खा जाता है, वह पाप को खाता है। भुञ्जते ते त्वद्यं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो बिना दिए खाता है वह चोर है।
हम अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटे, हमने कमाया है, तू इसे खा सकता था, लेकिन इस घी को उन लोगों में बांट देना चाहिए जो सारे विश्व में फैले हुए हैं।
सारा विश्व हमारा कुटुंब है, अतः हमें सारे विश्व को देना चाहिए।
हमने जो घी हवन कर दिया वह कहाँ गया? घी कहीं जलता नहीं है। दुनिया में कोई चीज नष्ट नहीं होती है।
आपको साइंस का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए।
दुनिया में जितना भी मैटर है वह कभी नष्ट नहीं हुआ। जितना मैटर पृथ्वी में शुरू में था उतना ही बना रहेगा। वह न तो एक रत्ती घटने वाला है और न बढ़ने वाला है। चीजों में परिवर्तन होते रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस रूप में। इन्हीं तीन रूपों में चीजें बदलती रहती हैं। पानी जब गिलास में रखा होता है तो वह लिक्विड होता है, पतला होता है। जब हम उसे जला देते हैं तो भाप बन जाता है, गैस बन जाता है। जब हम जमा देते हैं तो वह ठंडा हो जाता है और सॉलिड बन जाता है। ठोस, द्रव और गैस, इन तीन भागों में चीजें बदल जाती हैं।
बेटे, हम सारे विश्व को इसका हिस्सा बांटकर खाएंगे। घी हमारे पास है, खूब खाना।
एक दिन नहीं खाएगा तो तेरा क्या हो जाएगा?
हाँ पिताजी, एक दिन नहीं खाऊंगा तो मेरा कुछ हर्ज नहीं होगा। बेटे, समाज के प्रति हम अपने कर्तव्य को बांट दें तो कुछ हर्ज है क्या? नहीं पिताजी, अगर सबको फायदा होता है तो मुझे एक दिन बिना घी के रोटी खानी पड़े तो क्या? आप बांट दीजिए।
घी कहाँ गया?
जल गया। नहीं,
फिर क्या हुआ? वह हवा में फैल गया। हमने घी को जलाया नहीं है, वरन हमने उसे हवा में फैलाया है। किस तरीके से फैलाया है?
एक दिन आप आग के ऊपर लाल मिर्च जलाए। जैसे ही आप लाल मिर्च जलाएंगे, सबको छींक और खांसी आएगी।
यह क्या हुआ?
मिर्च तो यहाँ थी, फिर सबको खांसी क्यों आ गई?
क्योंकि मिर्च वायुमंडल में फैल गई।
मिर्च जली नहीं, फिर उसका क्या हुआ? मिर्च सूक्ष्म हो करके फैल गई, दूर दूर तक फैल गई। अगर दूर दूर तक फैली नहीं होती तो सबको खांसी क्यों आती?
सबको छींक क्यों आती? लाल मिर्च को जला देने से क्या हो गई?
वह सर्वत्र सूक्ष्म रूप में फैल गई। सामाजिक सुव्यवस्था की पद्धति है यज्ञ। मित्रों,
घी का हवन करने पर क्या हुआ?
फैल गया।
घी कहाँ चला गया? चाहे राय रत्ती के बराबर ही क्यों न हो, वह चहुं और फैल गया। उसे कीड़ों मकोड़ों ने खाया, जानवरों ने खाया,
हिंदुओं ने खाया, मुसलमानों ने खाया, सिद्ध महात्माओं ने खाया, जिसने जिसने हवा में सांस ली उन सब ने खाया।
कोई ऐसा प्राणी है जो हवा में सांस नहीं लेता हो? जो चीज हमने हवा में मिला दी है वह सबके पास चली जाएगी। हमारा एक छटॉक घी करोड़ों, अरबों, खरबों आदमियों तक चला गया। चलिए हमने मान लिया कि उनके हिस्से में वह राय के बराबर आया है, लेकिन उसमें एक फिलॉसफी काम करती थी कि हमारी चीज में और हमारी कमाई में दुनिया के हर प्राणी का और हर जीव का और हर मनुष्य का हिस्सा है, भाग है और हमको सबका कर चुकाना चाहिए।
हवन हमको यही सिखाता है। समाज के सुव्यवस्था की पद्धति हमको यज्ञ सिखाता है। आदमी ले और दे, आदमी को जरूर लेना चाहिए, लेकिन लेने के बाद में रोक नहीं रखना चाहिए। रोक कर रखने पर मुसीबत आएगी। मित्रों, आपको श्वास लेनी चाहिए, लेकिन उसे रोकना मत।
आपने अगर श्वास को रोक कर रख लिया तो आपका दम घुट जाएगा और आप मर जाएंगे।
श्वास आपको छोड़ना ही चाहिए।
रोटी आप खाएंगे बेशक, लेकिन रोटी को पेट में रोकिए मत। अगर आपने रोक लिया तो आपका पेट फूल जाएगा, दर्द हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी।
उसका निष्कासन होना ही चाहिए।
खाद्य के रूप में जो अनाज आपने खाया है उसे वापस करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। अगर आप दुनिया में खाद पैदा नहीं होने देंगे और पेट में अनाज खाते हुए चले जाएंगे तो फिर आपका पेट फूल जाएगा। श्वास को रोकिए मत, पेट में अनाज को रोकिए मत, चलने दीजिए जैसे कि पहिया घूमता है।
पहिए को घूमने दीजिए।
पहिए को घूमने नहीं देंगे और यह कहेंगे कि हमारी कमाई पर समाज का कोई हिस्सा नहीं है। हमने कमाया है, केवल हम ही खाएंगे। हम इसमें से किसी को कुछ भी देने वाले नहीं हैं। तब आप इंसानी फर्ज से महरूम हो जाते हैं और आप मनुष्य के कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं। यज्ञ का यही शिक्षण था जो हमने किसी जमाने में दुनिया को दिया था और इंसानों के भीतर देवता को जिंदा रखा था।
विश्व शांति का माध्यम था यज्ञ। मित्रों,
अब इंसान के भीतर से देवता मरता जा रहा है। अब देवता हमारे मंदिर में रह गया है।
हमारी आत्मा का देवता मिट गया।
हमारे हृदय का देवता मर गया, हमारी भावनाओं का देवता मर गया। अगर कहीं देवता जिंदा रह गया है तो पत्थर के देवता के रूप में मंदिर में बैठा हुआ है। हमारी आत्मा में से देवता क्यों निकलना चाहिए?
यज्ञ हमको यही शिक्षण देता है।
यह बड़ी महत्वपूर्ण फिलॉसफी थी यज्ञ की, जो हिंदुओं ने पूरे विश्व के लाखों करोड़ों लोगों को सिखाई है, जिससे दुनिया में शांति बनी रही।
यज्ञ की शिक्षाओं को मैं आपको क्या बताऊं?
इसके प्रभाव से शरीर का स्वास्थ्य अच्छा होता है, बेशक अच्छा होता है।
अभी वह समय आएगा कि यह दुनिया की सबसे बेहतरीन पैथी मानी जाएगी।
दुनिया में अनेकों पैथियां हैं, जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, क्रोमोपैथी आदि अनेक पैथियां हैं, लेकिन एक पैथी ऐसी भी है जो मनुष्य के भीतर चली जाती है और हजारों मनुष्यों का इलाज कर देती है। आप यज्ञ का धुआं करते हैं, धुआं करने के बाद में यज्ञोपैथी से इसका इंजेक्शन भी बनकर के तैयार होता है और हवा में उड़ता हुआ चला जाता है। चेचक के टीके बच्चों को लगाते हैं, बच्चे स्कूल में से भाग जाते हैं। हमारी तरफ तो ऐसा होता है, आपकी तरफ क्या होता है मालूम नहीं।
चेचक का टीका लगाने वाला आया और बच्चे भागे, सारा स्कूल खाली हो गया।
अरे साहब,
बुखार आ गया सो स्कूल से जल्दी आ गया। सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है यज्ञ चिकित्सा। मित्रों,
इस तरह यज्ञोपैथी से आपने जड़ी बूटियों का इंजेक्शन बनाया। जो आदमी गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था, जड़ी बूटियों का बना आपका इंजेक्शन उसे नाक के द्वारा पिला दिया गया। नाक में से होकर वह सारे शरीर में घूम गया। बुखार कम हो गया है, बीमारियां कम हो गई हैं। कैसा बढ़िया इंजेक्शन है। ऐसा बढ़िया इंजेक्शन कोई अस्पताल बना सकता है। यह बहुत ही बढ़िया अस्पताल है जो कीड़े मकोड़ों से लेकर जानवरों, पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों एवं सोते हुए रोगियों तक की बीमारियों को दूर करने वाला है। अगर आपका 2 रुपया खर्च भी हो जाए तो क्या बेजा हो गई, गलती की क्या बात हो गई। यह हमारी फिलॉसफी है, यह हमारी साइंस है जो मनुष्य को देवता बनाती है और मनुष्य को ऊंचा उठाती है। यज्ञ हमारे मस्तिष्क की बीमारियों की दवा है।
मित्रों,
मनुष्य की ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनको हम दिमाग की बीमारी कह सकते हैं। आप और हम में से अधिकांश लोग दिमागी रूप से बीमार हैं, जिनके लिए कोई दवा बन करके तैयार नहीं आएगी।
स्त्री ने दाल में नमक कम डाल दिया तो हम गुस्से में भुनभुनाते हुए गए और थाली को स्त्री के सिर पर दे मारा।
सिर में जख्म हो गया।
वह अस्पताल गई और पट्टी बंधाना पड़ा। वह कई दिनों बाद ठीक हुई। बच्चे रोते फिरे, मोहल्ले वालों ने गालियां दी।
बीबी के मायके खबर पहुंची तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटी को तूने मार डालने के लिए शादी की थी क्या?
आइंदा तूने अगर ऐसी हरकत की तो बहुत दुख पाओगे और हम अपनी बच्ची को ले जाएंगे।
दुनिया भर में क्लेश पैदा हो गई, कलह पैदा हो गई। गुस्सा क्यों आ गया? क्योंकि दाल में नमक कम था। अरे भाई,
कम लगा तो जरा सा और डाल लेते।
यह क्या हो गया?
दिमागी बीमारी है।
दिमागी बीमारियां इस कदर फैली पड़ी हैं कि मैं आपसे क्या कहूं।
मित्रों,
आदमी एक तरह से पागल हुआ चला जाता है। बात बात पर तुनक मिजाज, बात बात पर गुस्सा जरा सी बात है। गुस्सा हमारी नाक पर रखा रहता है। जरा सी कोई भी बात हो, किसी ने कुछ कह दिया और आप आग बबूला हो गए। स्कूल में लड़का फेल हो गया और रेल के नीचे कट गया, जहर खा लिया और अब मरे तब मरे। यह क्या हो गया है? हमारे दिमाग में यह बुखार के रूप में आता है। इस बुखार की कोई दवाई है क्या आपके पास? शारीरिक बुखार की दवा तो है, पर दिमागी बुखार की दवा अभी तक कोई तैयार नहीं की जा सकी है। लेकिन हमारे हवन की फैक्ट्रियों में और हवन के कुंडों में दिमागी बीमारियों की दवा तैयार की जाती है। यज्ञ की वायु कैसी सुंदर होती है, अगर आप इसको कभी इस्तेमाल करके देखें तो आप पाएंगे कि दिमागी बीमारियों को दूर करने के लिए कैसा सुंदर दवाखाना और अस्पताल है यह।
आपको क्रोध आता हो, आपका मन अस्थिर रहता हो, दूसरी शिकायतें हों, मन अशांत रहता हो, उद्विग्न रहता हो, कभी चिंताएं आती हों, तो हवन के धुएं का जरा सा लाभ लीजिए। अपने घर में एक छोटा सा हवन कुंड रख लीजिए और 5 आहुतियां गायत्री महामंत्र बोलते हुए रोज दे दिया कीजिए। फिर देखिए कि यह दवा काम की है कि नहीं।
हमारा कहना मत मानिए, आप अपने आप खुद इस्तेमाल कीजिए और अपने घर में घी बनता है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। 1-2 रुपये का खर्च है, कौन सी बड़ी बात है।
एक छोटा सा हवन कुंड लेकर के गायत्री मंत्र की आहुतियां देकर के आप हवन कर लीजिए और उसके लाभ से अपना और दूसरों का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य सही रखिए। यज्ञ का अद्भुत सामर्थ्य। मित्रों,
गायत्री मंत्र में शक्ति है, यज्ञ में शक्ति है।
यज्ञ की शक्ति को हम जानते हैं,
मशीन की शक्ति को भी हम जानते हैं, मंत्र की शक्ति में भी एक मशीन है। इस मशीन के द्वारा किस तरीके से वाइब्रेशन पैदा किए जाते हैं, किस तरीके से ऊर्जा पैदा की जाती है, यह बात लोगों की समझ में शायद आज न आए, लेकिन कल का विज्ञान बताएगा कि मनुष्य के भीतर की मशीन एक एटॉमिक भट्ठी की तरीके से है। इसके अंदर से जो ऊर्जा पैदा की जाती है वह इतनी जबरदस्त होती है। उस जबरदस्त ऊर्जा का शमन किस तरह से किया जाए, यही मंत्र विद्या है। मंत्र विद्या को बलवान और ताकतवर बनाने के लिए जिन डायनमो की जरूरत होती है, जिन बैटरियों की जरूरत होती है, उसका नाम हवन कुंड है। मंत्रों में अपने आप में शक्ति है, लेकिन उसको असंख्य गुनी जोरदार बनाना हो तो जैसे लाउडस्पीकर आप लगा देते हैं और छोटी आवाज बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से वेद मंत्रों की आवाज हवन कुंड की बैटरियों के द्वारा, माइक्रोफोनों के द्वारा, उनके जो एम्पलीफायर है उनके द्वारा, डायनमो के द्वारा मंत्रों की शक्ति आसमान में बहुत फैल सकती है। आपको पता है न कि सिनेमा के गानों की शक्ति आसमान में कितनी फैल गई है और आदमी को सिनेमा के गंदे और फूहर गाने याद हैं,
हमारे बच्चों को याद हैं, आदमी के दिमाग में वही खुराफात याद आती रहती है।
आकाश में फैलती हुई लहरें न जाने कहां से कहां क्या करती रहती हैं।
मित्रों,
यदि इसी आसमान में हम वेद मंत्रों की लहरें यज्ञों के डायनमो, बैटरियों के माध्यम से, भट्ठियों के माध्यम से फैला दें, तो फिर हम एक नई फिजा पैदा कर सकते हैं और नई दुनिया बना सकते हैं। यज्ञ का अपने आप में बहुत महत्व है। बहुत सी बातें आपको बता सकते हैं, परंतु अभी बहुत सी बातें न बताकर खास बात कहता हूँ कि आप यज्ञ के साथ में पैदा किए गए हैं।
गीता कहती है, सहयज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति 3 टेंस प्रजापति ने यज्ञ के समेत मनुष्य को पैदा किया। आप अकेले पैदा नहीं हुए,
आप 2 भाई पैदा हुए हैं और 1 आप हैं।
आप कहेंगे कि हम तो अकेले ही पैदा हुए थे।
2 कब पैदा हुए? आप गलत बात कहते हैं।
हम तो अपनी माँ के पेट से अकेले ही पैदा हुए थे।
आप अकेले पैदा नहीं हुए हैं,
आप 2 आदमी साथ साथ पैदा हुए हैं।
यज्ञ भी आपके साथ में पैदा हुआ है। यज्ञ साथ में कैसे पैदा हुआ? आपकी माँ के पेट में एक बूंदा गई कहीं से। माँ अपने शरीर की जवानी का रस, हड्डियाँ, खून, मांस सब उस छोटी सी बूंद के ऊपर टिपकाती चली गई और 9 महीने तक सारे का सारा अपनी जवानी का रस निचोड़कर उसे पोषित करती रही।
उस बेचारी को उल्टी होती रही, कराहती रही, सिर में दर्द होता रहा, लेकिन अपना खून पसीना निचोड़ निचोड़कर बच्चे को देती रही। मित्रों,
माँ ने क्या नहीं दिया? किसी का 25 cc खून इंजेक्शन द्वारा लगवाते हैं तो उसके लिए हमको ढेरों पैसे देने पड़ते हैं। डॉक्टर भी ढेरों पैसे हमसे वसूल कर लेते हैं। हमको चोट लग जाए और किसी को खून देना पड़े तो उसका एहसान हो जाता है।
आप हमको खून दे दो तो जन्म भर एहसान रहेगा कि भाई,
हमारे ऊपर मुसीबत आ गई थी और हमारा एक्सीडेंट हो गया था, तब आपने हमें खून दिया था। आपके खून से हम जिंदा रहेंगे और आपका जीवन भर एहसान मानेंगे।
जरा सा 50 cc
खून के लिए आप उस व्यक्ति का एहसान मानते हैं, लेकिन जिस माँ ने अपना इतना सारा खून, हड्डियां, मांस बराबर 9 महीने तक दिया, तो क्या यह त्याग नहीं है? यज्ञ नहीं है।
यज्ञ माने होता है सैक्रिफाइस।
यज्ञ होता है कुर्बानी के लिए, बलिदान के लिए, सेवा के लिए। इंसान कहाँ से पैदा होता है? माँ के प्यार में से पैदा होता है, त्याग में से पैदा होता है, बलिदान में से पैदा होता है। लाल रंग के खून को सफेद रंग के दूध में बदल करके 9-10 महीने नाराजगी से नहीं, गुस्सा होकर के नहीं, खींच करके नहीं, वरन प्यार से छाती से चिपका कर रखती है और कहती है कि बेटे दूध पी ले। दूध क्या है? उसके चेहरे की जवानी है।
लड़की दुबली होती चली जाती है,
चेहरा मुरझा जाता है, लाल रंग मुरझा जाता है, आंखें गड्ढे में धंसती चली जाती हैं,
चमड़ी ढीली होती चली जा रही है, तब भी वह बेटे को दूध पिलाती चली जा रही है। मित्रों,
क्या आप यज्ञ के बिना पैदा हुए थे? नहीं, आप यज्ञ के बिना पैदा नहीं हो सकते थे। अगर माँ ने इनकार कर दिया होता कि इस गंदे बच्चे के लिए मैं अपनी जवानी का हिस्सा खर्च नहीं कर सकती, जो सब दिन गंदगी फैलाता रहता है, रात को जगाता है, मैं दुनिया में शौक मौज करने के लिए आई हूँ कि इस बेकार और फूहड़ लड़के को पालने के लिए जिंदा रहूँ?
फेंक दो इसे, मैं इस बच्चे को पैदा नहीं करूँगी।
फिर तब आप क्या पैदा हो सकते थे? नहीं, आप पैदा नहीं हो सकते थे, फिर आप जाने कहाँ होते? कहीं हवा में बैठे होते, बाप के पेट में बैठे होते। आज आप जो इस तरह से नौकरी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, M00 पास हो गए हैं, अपनी क्षमता और वजन रखकर आप दुनिया में कुछ बन सकते थे? नहीं, आप नहीं बन सकते थे।
यह था सैक्रिफाइस घर वालों के लिए, यह था माँ का प्यार जो छोटे बच्चे को लेकर के गीले में सोती रही, हमको सूखे में सुलाती रही।
हम हर बार गंदगी करते रहे, हर बार हम उसको नुकसान पहुंचाते रहे।
मित्रों,
हम उसकी चीजें बिगाड़ते रहे, तोड़ते रहे, पर क्या मजाल कभी उसे गुस्सा आ जाए? हर वक्त वह हमें मोहब्बत करती रही। एक ओर हमारे द्वारा परेशान किया जाना और दूसरी ओर मोहब्बत किया जाना, क्या यह माँ का त्याग नहीं है? माँ का प्यार नहीं है?
चिड़िया का अंडा जिंदा रह सकता था, पर हम बिना माँ के जिंदा नहीं रह सकते थे। अगर माँ ने पेट में से निकालकर फेंक दिया होता तो मुर्गी का अंडा जी सकता था, दूसरे जानवर जिंदा रह सकते थे।
माँ के पेट में से निकालने के बाद कबूतर जिंदा रह सकता था, लेकिन हम जिंदा नहीं रह सकते थे।
अगर माँ हमारी देख माइनस भाल नहीं करती, दूध हमको नहीं मिलता, हमारी रखवाली नहीं करती, तो आदमी का बच्चा जीवित नहीं रह सकता था।
यह किस तरीके से पैदा हुआ? यह यज्ञ के द्वारा पैदा हुआ, जिसको हम हवन कुंडों के द्वारा याद कराते हैं कि यज्ञ इंसान का फर्ज है, यज्ञ इंसान के साथ में जुड़ा हुआ है,
जीवन का आधार है यज्ञ। मित्रों,
आदमी का शरीर जिंदा है, यह किस तरीके से जिंदा है?
जरा बताइए तो सही।
यह यज्ञ के आधार पर जिंदा है, यज्ञ न हो तो आप जी नहीं सकते, आप मर जाएंगे।
कैसे? हाथ ने कमाया,
हाथ गया कमाता रहा,
10 शिलिंग कमा करके लाया,
हाथ ने कहा कि 10 शिलिंग मेरा है,
मैं तो नहीं देने वाला हूँ, फिर तो मुश्किल आ जाएगी। हाथ चला आया, अच्छा भाई
क्या होगा?
चावल पकाया जाएगा, रोटी बनाई जाएगी, दाल बनाई जाएगी, खीर बनाई जाएगी, अब दूध चढ़ाया जाएगा और चाय बनाई जाएगी।
हाथ ने कमाया ना, किसने खाया?
मुंह ने खाया, हाथ ने खाया।
नहीं, हाथ ने नहीं खाया, कौन खा गया?
मुंह खा गया।
नहीं, मुंह ने नहीं खाया,
मुंह ने सिर्फ चबाया और चबा करके सैलाइवा लार निकाला और उस खुराक में सैलाइवा को सम्मिलित कर दिया जो हाथ ने कमाया था। हाथ ने कमाया और फिर मुंह को दिया,
मुंह ने चबाकर सैलाइवा मिलाया और पेट में धकेल दिया और खुद उठा कुल्ला किया और दांत में अनाज के जो छोटे कण लगे थे उन्हें बाहर थूक दिया। उसने कहा कि हमें क्या करना है, हम तो पीसने के लिए पैदा हुए हैं, सैलाइवा मिलाने के लिए हम पैदा हुए हैं, दूसरों की खुशहाली के लिए हम पैदा हुए हैं।
मित्रों,
समाज रूपी शरीर की मशीन और पुर्जे की तरीके से हम पैदा हुए हैं। अगर हम अपने आप को इस समाज रूपी मशीन का पुर्जा न माने तो यह घड़ी बंद हो जाएगी,
यह मशीन फेल हो जाएगी, इसलिए मुंह ने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया।
फिर क्या हुआ? यज्ञ हुआ और हो रहा है, फिर क्या हुआ? मुंह का खाया हुआ अनाज पेट में चला गया, पेट ने क्या काम किया?
पेट से मैंने कहा, दोस्त तुझे खूब मजा मिला,
दूसरों ने कमाया था, तुम इसको दबा कर रखो, बैंक में जमा कर दो या फिक्स डिपॉजिट कर दो,
फिर किसी को मत देना, अपने पास जमा रखो, जो आ गया सो अपना, देना मत। उसने कहा, जा हमको क्या सिखाता है,
ऐसा नहीं हो सकता, जो जमा करेगा सो मरेगा। इसलिए पेट ने क्या काम किया कि उसे हजम किया और उसमें कुछ चीजें मिलाई और वह हजम होता चला गया। हजम होने के बाद जो चीजें बेकार थीं वह हटा दी गई, जो काम की चीजें थीं, वे निकाल ली गईं और उनका खून बना दिया गया। खून बना करके उसे कहाँ भेज दिया गया?
दिल को भेज दिया गया।
दिल से मैंने कहा, अब यह खून बहुत मजेदार है, बहुत कीमती है और फोकट में मिला है।
तुम्हारी लॉटरी खुल गई, केन्या गवर्नमेंट की लॉटरी है, दबा लो। किसी को देना मत, किसी को बताना मत, यह तुम्हारे किसी काम आ जाएगा। सामाजिक चक्र है लेन देन। मित्रों, हृदय ने कहा, चल, हमको मारने आया है क्या?
हम तेरी बात को नहीं मान सकते।
हृदय का जो रक्त था, उसके लिए नन्ही नन्ही नस नाड़ियां मुंह फाड़े बैठी थी।
उनने कहा, पिताजी, आपके पास तो बहुत दौलत है, हमको नहीं देंगे क्या? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम सूख जाएंगी क्या, मर जाएंगी क्या? यह दौलत हमको नहीं मिलेगी क्या?
बेटी, तुमको भी मिलेगी।
बस हृदय ने नाड़ियों को दिया और नसों में अपना खून फैलता चला गया। नाड़ियों ने देखा कि बाप ने सारा खून हमको दे दिया, क्या उसको वापस नहीं मिलना चाहिए?
नाड़ियों ने कहा, पिताजी,
आपका खून हम आपको वापस करती हैं।
उन्होंने कहा, नहीं बेटा,
हम आपको वापस करते हैं।
हृदय नाड़ियों को देता है और नाड़ियां हृदय को देती हैं।
हम सब इसी बात से जिंदा हैं। डॉक्टर ने सीने पर स्टेथोस्कोप लगाया और यह कहा कि अभी की स्थिति में लप दप की आवाज हो रही है। अभी यह आदमी जिंदा है। जिस दिन नाड़ियां हृदय को खून देना बंद कर देंगी, फिर आप मर जाएंगे, और जिस दिन हृदय ने नाड़ियों को खून नहीं दिया, उस दिन आपकी मौत आ जाएगी।
जिस दिन नाड़ियां हृदय को वापस नहीं करेंगी, उस दिन आपकी मौत आ जाएगी।
क्यों आ जाएगी?
क्योंकि लेना भी आदमी का फर्ज है और देना उससे भी बड़ा फर्ज है।
यह समाज का चक्र है जो इसी तरह से घूम रहा है। अगर आपने समाज के चक्र को पहचाना नहीं, तो आपने जीवन जीने की प्रक्रिया को समझा नहीं। आदमी के जन्म की रीति को आपने जाना नहीं। आदमी का शरीर किस तरीके से जिंदा है और किन सिद्धांतों पर जिंदा है, यदि आपकी समझ में यह नहीं आया और इसे आप समझेंगे नहीं, तो आपका समाज मर जाएगा।
आपके समाज में विग्रह उत्पन्न होंगे और खून खराबियां पैदा होंगी, क्लेश उत्पन्न होंगे।
हर बार लाखों आदमियों का खून खच्चर हो जाएगा, समाज मर जाएगा और दुनिया तबाह हो जाएगी,
सब नष्ट हो जाएगा। अतः आपको देना ही पड़ेगा और देना ही चाहिए। आपको लेना चाहिए, लेकिन देना और भी जरूरी है, अन्यथा अशांति आएगी।
क्या है सृष्टि का क्रम?
मित्रों,
सृष्टि का क्रम किस तरीके से चलता है, जरा गौर कीजिए और देखिए कि दुनिया किस तरीके से चल रही है।
समुद्र के पास बादल गए और बोले, साहब,
हमको पानी की जरूरत है, आपके पास तो बहुत सा पानी रखा हुआ है।
समुद्र ने कहा, हाँ, मेरे पास पानी रखा हुआ है, तुम ले जाओ। बादल पानी भरकर ले गए।
बादलों ने जमीन पर पानी को बरसाया,
मिट्टी ने पानी को पिया, हरियाली पैदा हो गई।
फिर क्या हुआ? जमीन ने जब पानी पिया, तो उसको ख्याल आया कि यह समुद्र का पानी है, इसे आगे चलना चाहिए, नहीं तो समुद्र खाली हो जाएगा।
मिट्टी ने पानी पिया और छोटी छोटी नालियों के द्वारा वह पानी चलने लगा,
तालाबों में आया, फिर वही पानी धीरे धीरे जमीन पीती चली गई और फिर से वही पानी नदियों में आ गया।
नदियों से मैंने कहा, देखो, अब यह तुम्हारा पानी है, देना मत। अगर दे दोगी तो बेवकूफ कहलाओगी।
जो चीज अपने हाथ में आ जाए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए,
खुद खाना चाहिए, किसी को हिस्सा नहीं बंटाने देना चाहिए। उन्होंने कहा, आचार्य जी,
आप कहते तो सही हैं, लेकिन हमारा समुद्र सूख जाएगा,
फिर हमारा क्या होगा? बादल हमको पानी कहाँ से देंगे? मैंने कहा, ठीक है, आप अपना पानी समुद्र को जरूर दीजिए,
उसके बिना आपकी हस्ती दुनिया में कायम नहीं रह सकती।
मित्रों, बादलों से भी मैंने एक दिन कहा, बादलों,
किसी को बिना कीमत के पानी मत दिया करो, दुनिया वाले बहुत चालाक हैं।
आप एक एकड़ जमीन की सिंचाई का एक शिलिंग लेना, एक एकड़ जमीन पर जो कोई बादल पानी बरसाएगा, वह एक शिलिंग लेगा, तब पानी बरसाएगा।
बादलों ने कहा, नहीं साहब, हम आपकी बात नहीं मानते। अगर हम इस तरह एक शिलिंग के हिसाब से पानी बेचने लगेंगे, तो हमारी हस्ती दुनिया में से खत्म हो जाएगी। पानी का हम क्या करेंगे? जब लोग नहीं खरीदेंगे, तो हम पानी भरे भरे आसमान में कहाँ टंगे रहेंगे?
हमको देना ही चाहिए। मित्रों,
बादल जमीन पर पानी बरसाते हैं, जमीन को पानी देते हैं, जमीन पेड़ों को देती है, मिट्टी को देती है,
मिट्टी फिर नदियों को देती है। यह सृष्टि का चक्र चल रहा है।
जो कोई भी इनमें से बदमाशी करेगा, दुनिया को तबाह करेगा और खुद तबाह होगा। अगर बादलों ने बदमाशी की कि हम खुद जमा करेंगे और पानी बरसाएंगे, तो बादल मर जाएंगे।
अकेले बादल ही नहीं मरेंगे, सारी दुनिया भी मरेगी।
जमीन ने अगर यह किया कि हमने पानी पिया है और फोकट में बादलों से लिया है, हम तो जमा करके रखेंगे, हम नहीं देंगे, तो क्या हो जाएगा? जमीन मर जाएगी, गीली हो जाएगी, कीचड़ हो जाएगा, दलदल हो जाएगा और वहां कोई पौधा पैदा नहीं होगा। सब जमीन तबाह हो जाएगी और कोई फसल पैदा नहीं होगी। अगर जमीन ने पानी को नहीं दिया, इस चक्र को जारी नहीं रखा, तब सब जगह आफत आ जाएगी।
सृष्टि चक्र का मूल सिद्धांत है यज्ञ। मित्रों, पैसे का सर्कुलेशन जारी रखना पड़ेगा, बुद्धि का सर्कुलेशन जारी रखना ही पड़ेगा, पृथ्वी को परिक्रमा जारी रखनी ही पड़ेगी, प्रेम की परिक्रमा जारी रखनी ही पड़ेगी, सहयोग सहकार की भावना जारी रखनी ही पड़ेगी, एक दूसरे को सहायता की परिक्रमा जारी रखनी ही पड़ेगी। यह सृष्टि केवल एक ही सिद्धांत पर टिकी हुई पड़ी है, जिसका नाम यज्ञ है।
यज्ञ के सिद्धांतों को हम सिखाते हैं, इसके द्वारा हमें क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं?
अग्नि हमारा पुरोहित है, अग्निमीले पुरोहित, यह अग्नि हमारा पुरोहित है।
हम पुरोहित नहीं हैं, यह न बोलते हुए भी कितनी शिक्षाएं देता है, आप जानते हैं क्या?
अग्नि का सिर ऊंचा है, आप अग्नि सा मजबूत बनिए, अपना सिर नीचे नहीं ऊपर करो, आपका सिर हमेशा आसमान की तरफ रहना चाहिए, मोमबत्ती को जलाए उसकी लो ऊपर की ओर रहेगी,
दिया सलाए जलाए और उसका मुंह नीचे की ओर कर दीजिए, पर उसकी लो सदा ऊपर की ओर ही रहेगी, लकड़ी जलाए और उसे नीचे की ओर कर दीजिए, लो ऊपर की ओर ही चलेगी।
मित्रों,
आदमी का दिमाग हर मजबूरी में, हर परेशानी में गंदा और फूहड़ नहीं होना चाहिए, कमीना और नीच नहीं होना चाहिए,
कुचक्री और चालाक नहीं होना चाहिए,
हर मजबूरी में भी आदमी का दिमाग और आदमी की समझ ऊंची रहनी चाहिए।
यही हमारी अग्नि की शिक्षा है।
वह बोलती नहीं है तो क्या हुआ, बोलने के लिए हम और आप काफी हैं। मैं कहूंगा कि वे बकवासी लोग हैं, जबान के फूहड़ लोग हैं, आप उनको उपदेश दीजिए, लेकिन आपको दिखाने लायक न तो मैं काम करता हूँ और न मुझे दिखाने लायक आप काम करते हैं।
अग्नि की सच्ची शिक्षा।
आदमी बकवास करते हैं और अपनी क्रिया के द्वारा किसी को कोई शिक्षण नहीं देते हैं, लेकिन अग्नि अपनी क्रिया के द्वारा शिक्षण देती है कि हम अपना सिर ऊंचा रखें। अग्नि हमें और क्या शिक्षा देती है? यही शिक्षा देती है कि जो कोई भी चीज अपने भीतर डाली जाए, वह गर्म रहनी चाहिए और उसे अपने समान बना लेना चाहिए।
मित्रों,
आप हिंदुस्तान से आए थे, फिर आपने इतने लोगों को यहाँ तक क्यों नहीं बना लिया?
जब भगवान बुद्ध ने अपने 2.5 लाख शिष्य विदेशों में भेजे थे, तब शिष्यों को शिक्षा दी और कहा, बेटा, भगवान की पूजा यही है कि तुम हिंदुस्तान से बाहर चले जाओ।
उस जमाने में लकड़ी के जहाजों में भर करके लोग इंडोनेशिया को भेजे गए, मलाया को भेजे गए, जावा को भेजे गए, सुमात्रा को भेजे गए,
बोनिया को भेजे गए, सीलोन को भेजे गए, मेडागास्कर को भेजे गए। अपनी खुराक उन्होंने वहीं कमाई, रोटी उन्होंने वहीं कमाई, लेकिन अपनी संस्कृति और सभ्यता से ओतप्रोत होकर उन देशों को किसी जमाने में ज्ञान दिया, बुद्ध का संदेश सुनाया। आप 1000 वर्ष का इतिहास उठाकर देखिए, खुदाई देखिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति सारे एशिया में छा गई थी। एशिया ही नहीं, अमेरिका तक जा पहुंची थी। क्यों?
क्योंकि इन 2.5 लाख आदमियों ने काम किया था।
मित्रों, आप हिंदुस्तान के व्यक्ति यहाँ अफ्रीका में किस काम के लिए आए थे? जवाब दीजिए।
आपको इन्हीं उद्देश्यों के लिए यहाँ आना चाहिए था। आपको यहाँ के लोगों को सभ्यता और शिक्षा सिखाने के लिए, यहाँ के लोगों को कर्मनिष्ठ बनाने के लिए, अपने समान शिक्षित और सुयोग्य बनाने के लिए आना चाहिए था। क्या हमने वह काम किया?
अगर हमने वह काम किया होता तो हम यज्ञ को, अग्नि को बहुत मानने वाले व्यक्ति होते।
आग में जो चीज डाल दीजिए वह उसे अपने समान बना लेगी।
लकड़ी डाल दीजिए, वह आग हो जाएगी।
लोहा डाल दीजिए, लोहा आग में गर्म होने के बाद आग जैसा लाल हो जाएगा।
मिट्टी डाल दीजिए, थोड़ी देर में मिट्टी आग हो जाएगी।
यहाँ तक कि आप गोबर, मैला और गंदगी डाल दीजिए, थोड़ी देर में सब आग हो जाएंगे। गंदी चीजों को आप अपने समान योग्य नहीं बना सके तो यह बड़े शर्म की बात है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी, हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए भी, हमारे पुरोहित और हमारे यज्ञीय आदर्शों के लिए भी, जिनको जिंदा करने के लिए हम फिर दोबारा यहाँ आए हैं। जीवित करें अपने यज्ञीय आदर्श।
मित्रों, यज्ञीय आदर्श हमारे अंदर जिंदा रहे तो हम अग्नि के समान जैसे श्रेष्ठ आर्य हैं, उच्च कोटि के हिंदू हैं।
हम जहाँ कहीं भी रहेंगे, सबको अपने समान बना करके रहेंगे, चाहे कोई भी क्यों न हो। यह शिक्षा यज्ञ की है।
मित्रों, यज्ञीय शिक्षण आपको बताता है कि अग्नि आपका पुरोहित है, गुरु है।
अग्नि का मतलब यह है कि आप जहाँ कहीं भी जाएं, वहाँ के लोगों को अपने समान बना लें। यह बात अगर आपकी समझ में नहीं आती तो यज्ञ आपको सिखाता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, जैसा मैं करता हूँ, मुझको देख लें।
मैं खाली बकवास नहीं करता, मुझे व्याख्यान देना नहीं आता।
व्याख्यान देना तो आचार्य जी को आता है और दूसरे पंडितों को गाल बजाना आता है, लेकिन अग्नि का पुरोहित गाल नहीं बजाता, वह अपना कर्म करके दिखाता है कि देखो हमारे पास जो आता है उसे हम अपना बना लेते हैं।
तुम्हारे पास भी जो आए उसे अपना बना लो,
कार्य करें, बकवास नहीं।
यज्ञ का शिक्षण यही है कि आदमी को गर्म रहना चाहिए और प्रकाशवान होना चाहिए।
आग गर्म रहती है और प्रकाशवान रहती है,
बुझ जाएगी, लेकिन जब तक जिंदा रहेगी तब तक गर्म रहेगी और प्रकाशवान रहेगी।
गर्म से क्या मतलब है और प्रकाशवान से क्या मतलब है? गर्म से यह मतलब है कि हमारी नसों में गर्मागर्म खून चलना चाहिए,
हमारे क्रिया और कर्म मरने के वक्त तक सतत चलने चाहिए।
बूढ़ा आदमी हो तब क्या और जवान आदमी हो तब क्या? बूढ़े आदमी के काम करने के तरीके अलग हैं और जवान आदमी के तरीके अलग हैं।
मित्रों, विनोबा भावे 80 वर्ष के हो गए,
उनके काम करने का तरीका अलग है। वे लेखन का काम करते हैं लेकिन अलग तरीके से करते हैं, वे अपने तरीके से करते हैं, उनका अलग तरीका है पर काम करते हैं।
गांधी जी 80 वर्ष के करीब हो गए थे,
बराबर कामकाज करते रहते थे।
पंडित नेहरू 75-76 वर्ष के थे, लेकिन जवान आदमी के तरीके से करते थे। आदमी को बूढ़ा नहीं होना चाहिए,
मर जाना कोई खराबी की बात नहीं है, लेकिन बूढ़ा होना आदमी के बेइज्जती की बात है।
बूढ़े मत होना चाहे मर जाएं, लेकिन हरदम जवान रहना।
लोग कहते हैं कि साहब बुढ़ापा आएगा तो कैसे जवान रहेंगे, बुढ़ापे में तो आदमी और भी अच्छा हो जाता है, सफेद बाल हो गए तो क्या हो गया, सफेद बाल होना क्या खराब बात है, सफेद बाल होना तो बहुत अच्छी बात है।
अच्छा बताओ लड़कियों, तुम्हारे लिए दूल्हा ढूंढे तो सफेद वाला ढूंढे या काले वाला? हमको सफेद चाहिए, हमको काला नहीं चाहिए। अच्छा बच्चों,
तुम बताओ जिसकी शादी नहीं हुई है,
तुम्हें सफेद बहू चाहिए या काली बहू चाहिए? गुरुजी काली नहीं, सफेद चाहिए।
अच्छा बताओ कि सफेद बाल अच्छा होता है या काला अच्छा होता है? हमारे बाल अच्छे हैं या तुम्हारे बाल अच्छे हैं?
काले बाल अच्छे हैं। मित्रों, हमारे बाल सफेद हो गए हैं।
हम बढ़िया हैं या आप बढ़िया हैं? हम खूबसूरत हैं या आप खूबसूरत हैं? जो आम कड़ा होता है वह महंगा बिकता है या पिलपिला और पका हुआ आम महंगा बिकता है? जो पीला पड़ जाता है, पक जाता है, उसके दाम ज्यादा होते हैं या कच्चे आम के दाम ज्यादा होते हैं? पके आम के दाम ज्यादा होते हैं ना? अब देखो हम कैसे हैं,
हम पिलपिले हैं,
हमारे गाल पिलपिले हो गए हैं और आपके अभी कड़े हैं। आप सब बेकार आदमी हैं, हम यह सब जानते हैं, हम बढ़िया आदमी हैं, बूढ़ा होने से बहुत फायदा रहता है।
हमारी अग्नि यही कहती है कि आदमी को जब तक जीना हो तब तक जवान हो करके जीना चाहिए, बूढ़ा हो करके नहीं जीना चाहिए। आदमी को रोशनी देने वाला जीना चाहिए,
दीपक की तरह से रोशनी देते हुए जिए।
दीपावली की रात अंधकार छाया हुआ था,
लोगों ने कहा कि चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, सूर्यनारायण चलिए निकालिए और रोशनी दीजिए।
सूर्यनारायण ने कहा, भाई
अब तो हमको फुर्सत नहीं है, हम नहीं जाते,
अंधेरा है तो तुम भुगतते रहना। लोग बाग चंद्रमा के पास गए और कहा, चंद्र महाराज
रात घना अंधियारा है,
आप चलिए निकलिए।
उन्होंने कहा, नहीं भाई हमको ओवरटाइम नहीं करना है,
आज छुट्टी का दिन है, हम नहीं जाएंगे। लोगों ने कहा, दीपावली की रात, कार्तिक का महीना, क्या किया जाए। मिट्टी के दीपक उठे, जरा सी रुई और जरा सा तेल लेकर दीपक जलने लगे, सब जगह अंधेरा छाया हुआ था।
दीपकों ने कहा, हम रोशनी पैदा करेंगे और हम जलेंगे और उजाला करेंगे। दीपावली दीयों का, दीपकों का त्योहार है, इस दिन अंधकार के ऊपर दीपकों की विजय हुई। हम हर साल अमावस्या को दीपावली मनाते हैं और यह कहते हैं कि रोशनी की जय, अंधेरे का क्षय, अंधकार मिटाओ और दीपक जलाओ। आप लंबे लंबे मनुष्य हो तो क्या, छोटे हो तो क्या, आप अपने अपने कार्यक्षेत्र में रोशनी पैदा कर सकते हैं।
परमात्मा की संतान है मनुष्य। मित्रों, जिस तरह अग्नि प्रकाशवान है उसी तरह हर आदमी भगवान का बेटा है, हर आदमी शक्ति का पुंज है।
हर आदमी के अंदर वह शक्ति विद्यमान है जिससे वह जहाँ कहीं भी रहे रोशनी पैदा कर सकता है,
धर्मप्रायण बन सकता है,
धर्म में रुचि पैदा कर सकता है, कुछ दिशाएं पैदा कर सकता है, सब कुछ पैदा कर सकता है।
हमारे दीपक की अग्नि हमको यही सिखाती है।
वह सिखाती है कि अग्नि की पूजा की उपासना करने वालों, आप हमारी उपासना करो पर साथ साथ गर्मी और रोशनी पैदा करना भी सीखो।
यह शिक्षण किसका है? हमारे पुरोहित का।
हमारा पुरोहित कमाता तो बहुत है पर जमा नहीं करता, जबकि हम जमा करने में होशियार हैं।
अग्नि में आप घी डाल दीजिए।
कहाँ गया?
बांट दिया। मिठाई डाली।
कहाँ गई?
अरे बांट दिया, हमारे पास जमा है।
इधर से कमाते हैं उधर खर्च कर देते हैं, आप कमाए बहुत पर खर्च कर दीजिए,
इससे पहिया घूमता रहेगा।
अमेरिका की आर्थिक पॉलिसी इसी पर टिकी हुई है। वे कहते हैं कि कमाओ बहुत पर खर्च करो,
जमा मत करो। जो कोई जमा करेगा वह देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ डालेगा। खरीदी गई हर मोटर को नीलाम कर दीजिए, बेच दीजिए, समुद्र में फेंक दीजिए, फिर नई मोटर लीजिए। पैसे को रोकिए मत, खर्च कीजिए। भले ही खा जाइए लेकिन जमा मत कीजिए। खर्च करने से पैसे का सर्कुलेशन बना रहेगा और अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। मित्रों,
हमको जमाखोरी आती है और हमको जेवर पहनना आता है। हमको कमर में सोने की रस्सी बांधना आता है। हमको जमीन में धन गाड़ना आता है। हमको मकान बनाना आता है और न जाने हमको क्या क्या आता है। हम धनाढ्य बनना चाहते हैं, जमाखोर बनना चाहते हैं, परिग्रही बनना चाहते हैं। यह गलत तरीका है।
यह मधुमक्खी वाला तरीका है।
यह दूसरे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, पर शहद की मक्खी के लिए कोई फायदेमंद नहीं है।
युगांडा में जमाखोरी के कारण सारे मिल वाले भाग गए। जितने भी थे सब मिल छोड़कर भाग गए।
आप दूसरे तरीके से काम कीजिए। अध्यात्मवाद और साम्यवाद पैसे के संबंध में एक हैं। इनकी बातों में फर्क है। जैसे हम भगवान को मानते हैं और कम्युनिस्ट नहीं मानते हैं। हम पूजा करते हैं और वे पूजा नहीं करते। हम सदाचार को मानते हैं, वे नहीं मानते। बहुत सी बातों में फर्क है, लेकिन जहां तक पैसे का संबंध है वह अध्यात्मवाद और साम्यवाद में कोई खास फर्क नहीं है।
एक रत्ती भर का फर्क है।
वे इतना कहते हैं कि जबरदस्ती ले लो और हम कहते हैं कि इच्छा पूर्वक दे दो,
अपने पास रखो मत।
हम अपरिग्रह के अनुगामी हैं और यह कहते हैं कि परिग्रह मत करो।
पंचमहाव्रत। मित्रों, शास्त्रों में 5 तरह के व्रत एवं तप बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह।
उसके साथ ही 5 पाप बताए गए हैं, हिंसा, चोरी, झूठ बोलना और संग्रह करना आदि 5 पाप हैं। 5 पाप हम भी बताते हैं और लेनिन भी बताता है। इस मामले में लेनिन और ऋषि एक हैं। दोनों का मत एक है। हमारा यज्ञ यह बताता है कि जो भी आपके पास है उसको बांट दीजिए और समाज में वितरण कर दीजिए।
यह समाज व्यवस्थाएं हैं। यह मानवीय नीति के सिद्धांत हैं।
दुनिया में शांति लाने के लिए ये सिद्धांत हैं।
विश्व शांति के ये सिद्धांत हैं।
इस फिलॉसफी के लिए हमारे यज्ञ हो रहे हैं। यह शांति के लिए यज्ञ होगा।
भगवान आएंगे, देवता आएंगे, देवता प्रसन्न होंगे।
देवता किस मायने में आएंगे? श्रेष्ठ विचारों के रूप में, ऊंचे ख्यालों के रूप में आएंगे।
मित्रों,
देवता कोई मनुष्य नहीं है जो भाग करके आपकी मिठाई खाने के लिए आते हैं। आपकी मिठाई खाने के लिए देवताओं को आने की फुर्सत नहीं है। आपके 3 चावल और 2 फूल लेने के लिए देवताओं के पास टाइम नहीं है। देवता बहुत बिजी थे और घड़ी देख रहे थे कि यज्ञ में कितना टाइम लगेगा।
5 दिन का समय लगना चाहिए। गुरुजी,
हमको 5 दिन की फुर्सत नहीं है।
ब्रह्मा जी आप चलो, विष्णु भगवान आप चलो, बृहस्पति जी आप चलो, शुक्र देवता आप चलो। सब देवता चले और यहाँ पर कितने दिन बैठे? 5 दिन बैठे।
खिलाओगे क्या? चावल, रोली, धूप, दीप और शक्कर की गोली। चले जाओ, हमारे पास फालतू वक्त नहीं है।
क्यों?
कोई देवता नहीं आएगा। फिर कौन से देवता आएंगे?
ऊंचे ख्याल आएंगे, ऊंची भावनाएं आएंगी।
देवता इन्हीं का नाम है। ऊंचे विचारों का नाम देवता है। ऊंचे सिद्धांतों का नाम देवता है। ऊंची क्रियाओं का नाम देवता है। यही देवता हैं। इनकी प्रतीक मूर्तियां हमने बना ली हैं ताकि हम मनुष्यों को, बच्चों को ठीक तरीके से समझा सकें, और हम समझते भी हैं कि देवता यही हैं। इन देवताओं का आह्वान करने के लिए, देवताओं को बुलाने के लिए हम यज्ञ की व्याख्या कर रहे हैं और ब्राह्मण को करनी चाहिए। यज्ञीय परंपराओं की रक्षा।
मित्रों,
किसी जमाने में ब्राह्मण इन्हीं यज्ञीय परंपराओं के आधार पर भगवान से भी बड़ा रहा है।
एक बार ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण धोए। ब्राह्मण के चरण धोएगा भगवान? हाँ, ब्राह्मण के चरण धोएगा भगवान।
महाभारत में एक कथा आती है।
एक बार ऐसा हुआ कि विष्णु भगवान शेषशया पर सोए हुए थे। पहरेदार वहाँ किसी को जाने नहीं दे रहे थे। ब्राह्मण भृगु गए और भगवान से शिकायत की, महाराज जी,
दुनिया में क्या हो रहा है? आप सुनते नहीं हैं और पहरेदारों ने कह दिया कि भगवान सो गए हैं। अभी तो लंच टाइम है और भगवान नहीं आने वाले हैं।
भृगु गए और उन्होंने भगवान के सीने पर लात मारी। लात खाकर के भगवान तिलमिलाकर उठ बैठे और उन्होंने कहा, आप कहाँ से पधारे हो?
उन्होंने कहा, हम ब्राह्मण हैं और हम उद्बोधन करते हैं। भगवान कहाँ सो गया?
उन्होंने भगवान विष्णु के सीने पर लात मारी। विष्णु भगवान उठे और उनके पांवों को धोया। कहा, गुरुदेव,
आपके पैर में मेरे कठोर हृदय का कोई निशान तो नहीं बना?
उन्होंने कहा, निशान तो नहीं बना, लेकिन विष्णु भगवान के सीने पर ब्राह्मण की लात का निशान बन गया। मित्रों,
विष्णु भगवान की फोटो में अभी भी ब्राह्मण के पैर का निशान बना हुआ देख सकते हैं। जहां भगवान की प्रशंसा की जाती है, वहां भृगु की लात की बात भी बताई जाती है। विष्णु भगवान के सीने पर बैजंती माला है, मुकुट धारण किए हुए हैं, पर भृगु की लात का चिन्ह भी सीने पर बना हुआ है। ऐसा विष्णु भगवान की कथा में आता है।
तो लात खाकर के विष्णु भगवान भी ठीक हो सकते हैं। कौन सा ब्राह्मण?
वह ब्राह्मण जो यज्ञ के द्वारा पकाया गया है,
जिसने यज्ञ के सिद्धांतों को समझा, यज्ञ के आधार पर जीवन का निर्माण किया,
यज्ञ की गतिविधियों को विश्व में संव्याप्त करने के लिए अपने समय, श्रम, पसीने और बुद्धि का इस्तेमाल किया।
आपको ऐसा ही यज्ञ करना चाहिए, ऐसे ही यज्ञ की प्रतिध्वनि बनानी चाहिए। भगवान करे आपका सौकुंडीय यज्ञ इसी प्रकार का हो, जो जनजागृति को उत्पन्न करने वाला और आपके जीवन को दिशा देने वाला और आपके जीवन की गतिविधियों में श्रेष्ठता, उत्कृष्टता और आदर्शवादिता का समावेश करने वाला बने। भगवान करे आपका यज्ञ ऐसा ही बने। ओम सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामयाः, सवे भद्राणि पश्यन्तु मा।
आपका कल्याण हो।
भगवान यज्ञ के द्वारा आप ब्रह्म समाज वालों का कल्याण हो, जिन्होंने आयोजन किया है उनका कल्याण हो एवं सारे मानव समाज का कल्याण हो।
आज की बात समाप्त।
ओम शांति।